पृष्ठ संख्या एक। डॉक्टर अंबेडकर, एक जीवन दर्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भारत के परिवर्तनवादी आंदोलनों के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। वे भारत के दलित समाज के उद्धारक तथा पुरुषार्थ के प्रतीक थे। भारतीय समाज जो अनंत काल से जाति वर्ण विभाजन के कारण हजारों भागों में विभक्त था, उसके स्वीकरण का जो सराहनीय प्रयास डॉक्टर अंबेडकर ने किया, वह भारतीय इतिहास का सुनहरा अध्याय है। जाति प्रथा पर आधारित भारतीय समाज में जन्म आधारित विषमता थी, रोजी रोजगार में भयंकर अंतराल था, प्रगति के अवसर जन्मना जाति के आधार पर कुछ हिस्सों के लिए विशेष अवसर प्रदान करते थे और बहुसंख्यक वर्ग के लिए आगे बढ़ने के दरवाजे बंद थे। द्विजवादी उच्चता के शिकार, अनंत काल से जन्म के अभिशाप से अभिशप्त एक बहुसंख्यक वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साहसिक नेतृत्व से आगे बढ़ने की अदम्य शक्ति दी। धर्म, आस्था और विश्वास का आश्रय लेकर समाज के एक सीमित हिस्से के लोगों द्वारा बहुसंख्यक वर्ग को अछूत घोषित कर संपत्ति और रोजगार के सारे रास्ते पर अपना अधिकार सुरक्षित कर लिया गया था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में इस्लाम का प्रवेश हुआ। विदेशी आक्रमणकारी इस्लाम समर्थक सम्राट भी भारत समाज के दलित, पिछड़े और अभिशप्त शूद्र समाज में समता के इस्लामी संदेश को नहीं पहुंचा सके। जाति प्रथा के कारण उपजी अशिक्षा, सामाजिक परतंत्रता और कंगाली का कोई कारगर उपाय इनके भी राज्यकाल में नहीं हुआ। उनके भी दरबारी और परामर्शदाता उच्च समाज से ही होते थे। उन्हें बटे हुए समाज पर अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत कर पाना एक आसान काम दिखाई पड़ता था। उनके लिए भारतीय समाज के द्विज समुदाय द्वारा मिलने वाला अपेक्षित सहयोग शायद इस मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। यद्यपि मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे महारो ब्रैकेट में दलितों ब्रैकेट क्लोज की जबरदस्त ताकत का उठा होना भी एक कारण था, फिर भी मराठा नरेशों ने भी छुआछूत विनाश के क्षेत्र में कोई कारगर कदम नहीं उठाया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के नेतृत्व में जाति प्रथा के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह हुआ था। आध्यात्मिक स्तर पर गौतम बुद्ध ने वैचारिक, व्यावहारिक और आंतरिक समानता पर जोर दिया था। जैन मतावलंबियों ने भी इस धारा को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सभी आंदोलन जाति और वर्ण की राक्षसी काया में समा गए। भक्ति आंदोलन के द्वारा रामानंद स्वामी चैतन्य, कबीरदास, रैदास आदि संतों ने मानवीय एकता पर जोर दिया और बहुत हिस्सों में विभक्त भारतीय समाज के एकीकरण की दिशा में स्तुत्य प्रयास भी किए। 17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के आक्रमणकारी व्यापारी के वेश में भारत आए। पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में सत्ता संग्राम के साथ साथ धार्मिक जंग भी चल रही थी। इन क्षेत्रों में ईसाई यहूदी प्रभाव को रोकने और अपने धार्मिक साम्राज्य के प्रचार में इस्लामी धर्मावलंबी शासकों ने भयंकर जंग की। इस्लामी प्रचारकों का पीछा करते हुए ईसाई कार्य प्रचारकों की दृष्टि भारत की ओर मुड़ी और वे भी एक के बाद एक पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंततः अंग्रेज भारत में आए। पृष्ठ संख्या 2। उनका मंतव्य जहां भारत पर राज्य करना था, वहीं यहां अपने ईसाई साम्राज्य का भी विस्तार करना था। जैसे इस्लामी धर्म प्रचारक राजसत्ता के साथ ही भारत आए, वैसे ही ईसाई मिशनरी ने भी भारत में प्रवेश किया, किंतु दोनों धर्मों के सामाजिक समानता के संदेश उत्कट जिजीविषा युक्त भारतीय जन्म वर्ण समाज के घोर कोलाहल में दब गए। इस्लामी और ईसाई राज्य सत्ता में विभक्त भारतीय समाज को शासित कर सकना ज्यादा आसान नजर आ रहा था, इसीलिए उनकी रुचि भारतीय समाज की एकता में नहीं रही। 18वीं-19वीं शताब्दी में इतिहास ने करवट ली। यूरोपीय समाज से संपर्क में आने के बाद भारतीय समाज में भी आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के बारे में एक नई रुझान पैदा हुई। भारत में यूरोपीय संस्कारों के कारण वहां उत्पन्न व्यक्तिगत आजादी के विचार, समानता की धारणा उपनिवेश के माध्यम से अविकसित राष्ट्रों की लूट के विरोध के भाव आदि पैदा हुए, जिसके फलस्वरूप भारत में भी सुधारवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। इन सुधारकों की धारणा थी कि जब तक जन्म पर आधारित सामाजिक विषमता रहेगी, तब तक राजनीति में भी न्याय नहीं मिलेगा। भारतीय राष्ट्रवाद की जब भी आधुनिक अर्थों में विवेचना होगी, उसमें बौद्धिक पुनर्जागरणवाद का अतुलनीय योगदान सामने आएगा। यद्यपि यह आंदोलन मूलतः नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा से जागृत हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय समाज में एकता और समता का चैतन्य भाव गहरे रूप में पैदा किया। इस आंदोलन का अगुआ ब्रह्म समाज था, जिसके नेता राजा राम मोहन राय ब्रैकेट में 1772 से 1833 ब्रैकेट क्लोज, देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रैकेट में 1817 से 1905 ब्रैकेट क्लोज, केशव चंद्र सेन ब्रैकेट में 1838 से 1884 ब्रैकेट क्लोज आदि थे। यह आंदोलन ईसाइयत की भक्ति समर्पण भावना, उपनिषदों का बौद्धिक अद्वैतवाद तथा सामाजिक समन्वयवाद के विचार को लेकर चल रहा था। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का अध्यात्म और ईसाइयों के भक्ति भाव का समन्वित रूप ब्रह्म समाज आंदोलन के रूप में था। इस विचार के अनुसार जाति के आधार पर मानव का अलगाव नहीं हो सकता। मानव में भ्रातृभाव पैदा करना इनका उद्देश्य था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसने जाति प्रथा के विनाश का संकल्प किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर पूर्ण वैदिक समाज की स्थापना का संकल्प लिया, जहाँ जाति और वर्ण आधारित विषमता नहीं थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर स्वामी विवेकानंद ने दलितों के उद्धार का धार्मिक आंदोलन छेड़ा। ऐसे आंदोलनों की पृष्ठभूमि में संपूर्ण भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। हाँ, अंग्रेजों ने अपने देश में पालन होने वाले सिद्धांत कानून के समक्ष समानता का प्रथम प्रवेश भारत में भी किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शासन के लिए जो अंग्रेजी कानून आए, वे जाति के आधार पर किसी के साथ भेद करने वाले नहीं थे। उसी समय समाज सुधारकों की दो धाराएं उत्पन्न हुई, राणा डे आगरकर और डॉक्टर भंडारकर आदि इस राय के थे कि समाज सुधार का काम केवल धार्मिक और सामाजिक स्तर पर ही पूरा किया जा सकता है, किंतु बाल गंगाधर तिलक की राय थी कि इस पर सामाजिक और राजनैतिक दोनों स्तर पर कार्य होने चाहिए। अंग्रेजी सत्ता राजनैतिक कारणों से इस सामाजिक बंटवारे को जिंदा रखना चाहती है, इसीलिए इसे राजनैतिक चुनौती के रूप में भी कबूल किया जाना चाहिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के अनुसरण से भारत में नए बौद्धिक राजनैतिक चहलकदमी की शुरुआत हुई। तिलक, आगरकर, गोखले के नेतृत्व में महाराष्ट्र के इलाके में रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बोस आदि बंगाल में, विजय राघवाचारी, पंतुलु रंगैया नायडू, जी सुब्रमण्यम अय्यर आदि ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में और लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, हंसराज गुप्त आदि ने उत्तरी हिंदुस्तान में इस तरह के शैक्षिक सामाजिक एकता के आंदोलन में अपने को उतारा। पृष्ठ संख्या 3। उन्नीस में सत्य शोधक समाज की स्थापना करके ज्योतिबा फुले ने सामाजिक एकता के संग्राम को तेज किया। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। इन संपूर्ण आंदोलनों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में नई जागृति आई, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलनों को भी गति मिली। बाल गंगाधर तिलक के बाद मोहनदास करमचंद गांधी दास्ता विरोधी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता हो गए। अगस्त 1920 को तिलक जी का देहावसान हुआ और उसी दिन से गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तिलक जी द्वारा चलाए गए राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता के दोहरे संघर्ष की बागडोर गांधी जी ने संभाला। इसीलिए आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी ने कहा, अपने कार्यक्रमों में छुआछूत मिटाओ को दूसरा स्थान नहीं दिया जा सकता। सामाजिक भेद के राक्षस को मारे बिना स्वराज्य का सपना अधूरा है। कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में प्रथम बार दलितों के उद्धार के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस तरह भारतीय समाज में बहिष्कृत एक जाति महार ब्रैकेट में दलित ब्रैकेट क्लोज के परिवार में 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर का जन्म इंदौर के निकट महू कस्बे में हुआ। इनके पिता कबीरदास की भक्ति आंदोलन की क्रांतिकारी धारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने अपनी सेना में महारों को अंत्यज होने के कारण भर्ती पर पाबंदी लगाई थी। रामजी अंबेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत के इस आदेश के खिलाफ संघर्ष किया और प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में एक महार बटालियन की स्थापना हुई। रामजी अंबेडकर स्वयं सेना में काम कर चुके व्यक्ति थे। वे सेना में सूबेदार, मेजर और 14 वर्षों तक महू के सैनिक स्कूल में प्रशिक्षक के पद पर काम कर चुके थे। उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष में 14वीं संतान के रूप में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उन्हें 1894 में रत्नागिरी जिले के लोक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर के रूप में पुनः सेवा में नियुक्त किया गया, जहां वे बाद में सतारा स्थानांतरित कर दिए गए। 1900 में भीमराव अंबेडकर सरकारी स्कूल सतारा में पहली कक्षा में भर्ती हुए, जहां से उनका नाम भीवा राम जी अम्बा वाडेकर रखा गया। चूंकि रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके में अंबावाड़े नामक गांव के इनके दादे परदादे थे, इसीलिए इन लोगों के नाम के साथ अंबावाड़ेकर नाम जुड़ा करता था। किंतु स्कूल में इन्हें पुत्रवत प्यार करने वाले शिक्षक के उच्चारण की दुरूहता के चलते अंबेडकर कहना शुरू कर दिया, जो अंत तक प्रचलित रहा। बाल्यावस्था में ही अंबेडकर को अछूत होने का अभिशाप सताने लगा था। कोई भी नाई इन लोगों का बाल काटने को तैयार नहीं था। इनके सहित इनके भाइयों का बाल माता श्री काटा करती थी। कहानी है कि बाल्यावस्था में अंबेडकर अपने भाई के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गोरेगांव रेलवे स्टेशन जा रहे थे। बैलगाड़ी चालक को पैसा का भुगतान हो गया था, रास्ते में गाड़ीवान को जब पता चला कि दोनों बालक अंत्यज जाति के हैं, तो वह बैलगाड़ी से उतर गया। उसने कहा कि दोनों बालकों के शरीर छूने से मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा। इससे तंग आकर बैलगाड़ी अंबेडकर के भाई ने चलाई और गाड़ीवान जमीन पर पैदल चलता रहा। इस तरह के जन्म पर आधारित विषमता के शिकार होने वाले अंबेडकर के मन में आरंभ से ही इस प्रथा के खिलाफ आक्रोश पैदा होने लगा। पृष्ठ संख्या 4। स्कूल में अद्विज बच्चों को अध्यापक से प्रश्न पूछने की मनाही थी। कक्षा में अंत्यज बच्चे सामूहिक रूप से नहीं बैठ सकते थे। सामूहिक रूप से बच्चों के खेल कूद पर भी पाबंदी थी। कोई भी बालक अछूत बच्चों को गेंद तक नहीं देता था। प्यास लगने पर पानी पीने पर भी पाबंदी थी। यदि किसी अछूत बच्चे को प्यास लगे तो उसे किसी अध्यापक अथवा स्कूल के कर्मचारी से कहना पड़ता था। फिर अछूत बच्चा मुंह खोलकर खड़ा होता था और ऊपर से कोई द्विज गिलास से पानी गिरा देता था। यह जल आधा मुंह में और आधा उस बच्चे के कपड़ों पर गिर जाता था। संस्कृत की शिक्षा अछूत बच्चे को नहीं दी जा सकती थी। संस्कृत के अध्यापक की हठधर्मी के कारण अंबेडकर को हाई स्कूल में अपनी द्वितीय भाषा फारसी लेनी पड़ी, जबकि अंग्रेजी प्रथम भाषा थी। 1904 में सतारा से इनके पिताजी सेवानिवृत्त होकर बंबई चले आए। वहाँ एल्फिंस्टन हाई स्कूल में, जो एक सरकारी संस्था थी, अंबेडकर ने प्रवेश लिया। चूंकि बंबई शहर था, इसीलिए वहाँ स्कूल में जाति पाति के बंधन उतने कठोर नहीं थे जितने सतारा में थे। यहाँ सामूहिक रूप से खेल कूद में बच्चे हिस्सा ले सकते थे, लेकिन भाव यहाँ भी कठोर थे। एक बार एक शिक्षक ने अंबेडकर से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने को कहा। ब्लैक बोर्ड के पीछे सभी बच्चे अपना खाने पीने का बक्सा रखा करते थे। ज्यों ही अंबेडकर ब्लैक बोर्ड की ओर कुछ लिखने को चले, कक्षा के सभी बच्चे उनके पहले बोर्ड की ओर दौड़ पड़े। उनका ख्याल था कि यदि अंबेडकर ने ब्लैक बोर्ड को हाथ लगाया तो उससे सट कर रखा हम लोगों का खाना अपवित्र हो जाएगा, और सभी बच्चों ने बोर्ड के पीछे रखे टिफिन करियर उठा लिए। यह घटना संपूर्ण जीवन अंबेडकर को याद रही, किंतु इस तिरस्कारपूर्ण जिंदगी के बावजूद हाई स्कूल की परीक्षा में 1907 में अंबेडकर को प्रथम श्रेणी मिली। यह किसी भी अछूत वंश में उत्पन्न बालक का एक चमत्कार था। सत्यशोधक आंदोलन के लोगों ने उनके सम्मान में एक आयोजन किया, जहां उन्हें गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक पुस्तक भेंट की। उनके बाल्यकाल में उनके जीवन के संस्कारों को ढालने में इस पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान है। यद्यपि महारों के अत्यंत पिछड़े परिवार में पैदा होने के बावजूद इनके परिवार के संस्कार कुछ ठीक थे। इनके पिताजी को सेवा काल में 50 रुपये माहवार वेतन मिलते थे, जो उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी। पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, किंतु जो अंधविश्वासी संस्कार थे, अभी वे लोग भी उससे अलग नहीं हो सके थे। वे अपने पिताजी की सबसे छोटी और 14वीं संतान थे, इसीलिए पिता इन्हें अन्य बच्चों से अधिक स्नेह भी करते थे। लालन पालन में संतानों की संख्या अधिक होने के नाते आर्थिक तंगी तो सामने आती ही थी। इसी बीच जब वे केवल 14 वर्ष के थे, तो एक 9 वर्ष की अबोध कन्या रामाबाई के साथ उनका विवाह रच दिया गया। उस समय अंबेडकर भी प्राइमरी की कक्षाएं मुश्किल से पास किए थे। आर्थिक तंगी और अबोध अवस्था का विवाह, इन दोनों ने उनकी शिक्षा को कुप्रभावित किया। फिर भी वे बाल्यावस्था से ही पढ़ने में अगली कतार के रहे। बड़ौदा के महाराज समाज सुधार आंदोलनों में गहरी रुचि लेते थे। उन्होंने अपनी तरफ से दलित और शूद्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया। महाराज शिवाजी राव ने घोषणा की थी कि वे किसी पढ़ने लिखने वाले अछूत बालक को छात्रवृत्ति देंगे। उन्होंने 25 रुपये माहवार अंबेडकर के लिए बतौर छात्रवृत्ति देना शुरू किया। कई शिक्षकों ने उनकी प्रखर प्रतिभा को देखकर कपड़े और पुस्तकें दीं। पृष्ठ संख्या 5। स्कूलों में उस समय द्विज वर्ग के ही लोग स्कूल की कैंटीन चलाते थे, जिसमें अछूतों को चाय और भोजन नहीं मिलता था। बावजूद इसके उन्होंने अच्छे अंकों से बीए की परीक्षा पास करने के बाद बड़ौदा राज्य की सेवा में नियुक्ति ले ली। बड़ौदा के महाराज तो समाज सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका तंत्र पूरा का पूरा द्विज तंत्र था। अंबेडकर के नीचे काम करने वाला चपरासी भी सीधे उनके हाथ में पत्रावलियां न देकर ऊपर से फेंक देता था। उन्हें रहने के लिए मुख्य आवासीय इलाके में घर नहीं मिलता था। वे एक आर्य समाजी विचार वाले पंडित के साथ रहने लगे थे। उन्हें सेवा में छुआछूत के भाव ने इस तरह प्रताड़ित किया कि वे अपने पद से एक वर्ष के भीतर ही त्यागपत्र देकर अलग हो गए। महाराज बड़ौदा ने कुछ छात्रों को पठन पाठन हेतु अमेरिका भेजने की घोषणा की। वहां संपूर्ण खर्च उनके राज्य को वहन करना था। अंबेडकर ने भी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और महाराज की ही सहायता से 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश ले लिया। किसी विदेशी विश्वविद्यालय में महार विद्यार्थी को गायकवाड़ स्कॉलर के रूप में शिक्षा ग्रहण करने का यह प्रथम अवसर था। 2 वर्षों में उन्हें एमए की उपाधि प्राप्त हो गई। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य के ऊपर शोध प्रबंध लिखा। उसी समय उन्होंने प्राचीन भारतीय जाति प्रथा पर भी एक आलेख पढ़ा, जो उनके प्राचीन भारतीय समाज की गहरी जानकारी का दस्तावेज है। उसी दौरान उनका लाला लाजपत राय से साक्षात्कार हुआ। लाला जी अपने समय के श्रेष्ठ समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे अमेरिका में उन दिनों निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उन्हें अक्सर पुस्तकालयों में जाना रहता था। वहां महार जाति में पैदा एक युवक की प्रतिभा मेधा को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे प्रायः अंबेडकर से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार आंदोलनों की चर्चा करते रहते थे। 1916 में उन्होंने विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी डिग्री के लिए थीसिस प्रस्तुत की। विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। इस पुस्तक को उन्होंने महाराज शिवाजी राव बड़ौदा को समर्पित किया था। इस थीसिस की विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापकों ने काफी सराहना की। उसी वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका से विदा ले ली। वे MSc ब्रैकेट में अर्थशास्त्र ब्रैकेट क्लोज की शिक्षा पूरी कर ही रहे थे कि उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई। उन्होंने महाराज बड़ौदा से छात्रवृत्ति का समय बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ चला गया और उन्हें वापस आकर करार के मुताबिक बड़ौदा राज्य में अपनी नौकरी फिर से शुरू करनी पड़ी। उन्हें महाराज का मिलिट्री सीक्रेटरी बनाया गया। महाराज का प्रयास था कि बाद में वे राज्य के वित्त मंत्री होंगे। बड़ौदा की नौकरी में फिर उन्हें वही पुरानी जलालत झेलनी पड़ रही थी। उन्हें रहने के लिए कहीं घर नहीं मिल रहा था, कोई चपरासी उनकी सेवा को तैयार नहीं था। फाइलों को दूर से ही फेंक कर चले जाने का पुराना ढर्रा, मजबूरी में उन्हें एक पारसी होटल में ठहरना पड़ा। उन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म से मुक्ति के लिए राज्य के हेड दीवान को भी लिखा, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह की मदद से इनकार किया। लंबे समय तक अमेरिका इंग्लैंड के प्रवास में रहने वाले एक प्रखर चिंतक के लिए जाति पर आधारित इस अपमान को झेल सकना एक कठिन कार्य था। इसीलिए उनका मन अब सेवा में नहीं लगा और वे अपने पद से त्याग पत्र देकर बंबई वापस चले आए।